શ્રી પરમાગમસાર બોલ નંબર 638 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન, સળંગ પ્રવચન નંબર 642, મૂળ કેસેટમાં અવાજ ધીમો છે તથા ડિસ્ટર્બન્સ છે.
अपना की पहचान का विषय चलता है यहाँ. जिस प्रकार आत्मा पर से भिन्न और स्व से परिपूर्ण अभिन्न समझ में आवे, पहचानने में आवे, उसी प्रकार पहचान करनी चाहिए, निश्चय करना चाहिए, ऐसा यहाँ इस बोर्ड में फरमाया है. इस विषय पर पहचान करने के लिए हमें किस प्रकार से इसका प्रयोग करना चाहिए, ये विषय अपने चल रहा है. इस विषय पर दृष्टांत लिए थे हर्षोक के विषय में या उदयमान प्रसंगों में जो ऊपर प्रवेश भाव होता है, इसका दृष्टांत लिया. एक जी बिजली नहीं है ना, बिजली नहीं है और आवाज थोड़ी धीरी है, माइक नहीं चलता है, बिजली नहीं है और आवाज भी धीरी है, थोड़ा आपको ज्यादा ध्यान देने की परिस्थिति पैदा हो जाएगी. तो ठीक ही है, वो भी अपने को प्रतिकूलता को अनुकूलता में घटा लेनी है. थोड़ी देर के बाद आवाज थोड़ी मोटी भी होगी. शुरू शुरू में तो यही परिस्थिति है कुदरती. प्रयोग करने में एक अच्छा मौका है शाता, शाता का. ऐसे तो हम सोचते हैं मोटी मोटी रूप से कि शरीर और आत्मा भिन्न है, क्योंकि शरीर पुद्गल है पर आत्मा चैतन्य स्वरूप ही है. और सूक्ष्म में बुद्धि में ये बात समझने में कोई लंबी दिक्कत नहीं है, इसलिए कि ये प्रकट रूप से भिन्न स्वभावी पदार्थ है. शरीर है वो पुद्गल रजकण के पिंड है और आत्मा चैतन्य पिंड है, ज्ञान दर्शन वाला है. जैसा ज्ञान दर्शन पुद्गल में नहीं रहता, इसलिए समझने में ये आसान है, बुद्धिगोचर करने में तो आसान है. फिर भी जो समझ में आई उस बात को अनुभव गोचर करने में जरा सूक्ष्मता है. इसमें जो बात स्थूल रूप से आसानी से समझी जाती है, ये अनुभव गोचर करने में इतनी स्थूल नहीं है. तो यहाँ पहचान के विषय में हम अशाता के प्रसंग को ले लें कि जब जब शरीर में अशाता पैदा हुए, हमें इस वक्त अवलोकन करना चाहिए. ये प्रयोग का विषय रहा कि अशाता जीव की अवस्था है या शरीर की अवस्था, दर्द है, पीड़ा है, जो भी कुछ किसी भी प्रकार का अशाता का वेदन है, वो तो अवस्था शरीर की है या जीव की? शरीर की है तो शरीर की समझने में तो आती है शरीर की, लेकिन अनुभव में क्या आता है? प्रयोग का विषय ये रहा तो इसमें सत्ता को पकड़ नहीं सकती है कि जो सत्ता ज्ञान मात्र रूप से है उसमें असाता का बोधने की सत्ता नहीं है। और असाता का वेदन की जो सत्ता है उस सत्ता में ज्ञान की सत्ता का अभाव है। ज्ञान की मैंने हमारी सत्ता सत्ता का अभाव है। प्रत्येक वो सत्ता है यहाँ पर तो ऐसा लगता नहीं, लगता तो ऐसा तो जैसे हमें दर्द हो रहा है, हमें पीड़ा हो रही है, इस पीड़ा का दुख भी हमको महसूस होता है। ऐसा क्यों लगता है? जब है अलग अलग फिर ऐसा क्यों लगता है जी? अपने पने की बुद्धि तो है लेकिन ज्ञान और ये ज्ञान में प्रतिबिंबित होने वाली जो पीड़ा का जो प्रकार है उज्ज्वल पर्याय का, तो उसमें निकटता बहुत है, बहुत निकट है। शरीर और आत्मा का योग है ऐसा कहने में आता है। मन योग वचन योग का योग, योग मैंने संयोग, तो इतने अत्यंत निकटता होने से और शरीर में भिन्नपना की बुद्धि जो है वो तैयार नहीं की है, ये दो बात साथ में हो गई है, दो बात साथ में हो गई है। एक तो अत्यंत निकटता है और दूसरी बुद्धि भी ऐसी आगे से अभिप्राय में रख लिए कि ये मेरा शरीर है, इसमें नुकसान होगा वो मेरा होगा, जो भी उसमें नुकसान होगा मेरा ही होगा। शरीर में दुबलापन आया तो मैं दुबला हो गया, तगड़ा होने से शरीर तगड़ा होने से मैं तगड़ा हो गया, शरीर की निर्बलता में मेरी निर्बलता और शरीर की तंदुरुस्ती में मेरी तंदुरुस्ती। ये प्रायोगिक रूप में इतना दृढ़ अभ्यास रूप हो गया है कि इसको मिटाने के लिए इससे ज्यादा अभ्यास प्रायोगिक रूप में होना जरूरी है। दोनों में प्रयोग के सामने प्रयोग चाहिए। जब ये बैलेंस होगा ना, जब एक पल्ले में चीज पड़ी है, एक किलो तो वहां सामने एक किलो का तराजू में जो लगेगा वजन, जब भी बराबर नाटा आ जाएगा, इसके पहले नहीं आएगा। वैसे ही जब हमने उल्टा प्रयोग से क्या उल्टा प्रयोग से एकत्व किया है, उल्टा प्रयोग से भिन्न होने पर भी अभिन्न रूप अनुभव किया है, उल्टा प्रयोग से किया है, तो प्रयोग भी उल्टा करना पड़ेगा। तो कैसे करें? तो जब जब भी असाता का उदय हो, साता के उदय में तो ये शुरू में कठिन पड़ता है लेकिन असाता का उदय में शुरुआत करनी अच्छी है। इसका मतलब ये भी हुआ कि जब भी असाता आवे मुमुक्षों को एक अच्छा मौका मिलता है अपनी पहचान करने के लिए, प्रयोग करने के लिए। पहचान हुई उसके लिए भी, नहीं पहचान हुई इसके लिए भी प्रयोग करने का बहुत अच्छा मौका है। असाता कोई घबराने की चीज नहीं है और कोई इससे दुखी होने की चीज नहीं है, तो ना प्रयोग करने वाले को एक अच्छा मौका मिलता है ऐसा वो समझे तो उसको उसकी जो कल्पना है कि ये दुखदायक प्रसंग हमारे लिए आया, उदय आया, दुखदायक उदय आया, ये कल्पना ही मिट जाएगी, शुरू से ही मिट जाएगी, ऐसा हो जाएगा। फिर से प्राय क्या होता है कि किसी भी प्रकार की असाता का उदय होने से इसके प्रति द्वेष आ जाता है कि ये नहीं होना, मुझे ये कैसा, ये क्यों हुआ, मुझे ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा तो अच्छा, ये मिट जाए तो अच्छा है। ये सतत इसकी व्याधि की उपाधि रहा करती है। ये सामान्य तौर से बनता है, लेकिन इस लाइन में जिसका प्रवेश हुआ हो या जिसने प्रवेश करना चाहा हो, उसके लिए तो ये बहुत अच्छा मौका है, प्रवेश करने के लिए बहुत अच्छा मौका है। तो देखते रहे कि असत्ता की सत्ता में मेरा ज्ञान है कि नहीं है, पर ज्ञान की सत्ता में असत्ता की सत्ता है कि नहीं है। जहां तक इससे भिन्नता अवभाषित नहीं हो, वहां तक वो देखते रहे, बारी बारी से देखते, बारीकी से देखा। बहुत सुंदर सिद्धांत है इस विषय में कि ज्ञान का प्रभाव ज्ञान ही को भेदन करने का है। यहाँ नास्तिक बात हुआ है, इसमें से हम अच्छे निकाले। गुरुदेव ये फरमाते हैं कि जिस प्रकार आत्मा पर से भिन्न पर स्वयं से परिपूर्ण व्यक्ति है, नहीं समझ में आवे, नहीं पहचान में आवे, पहचानने में आवे, इसी प्रकार लक्षण से लक्ष्य का निर्णय करना है। इतना शब्द पड़ा है पुरुषा चीज से देखना, तो हम उसको थोड़ा और स्पष्ट करेंगे कि ज्ञान का स्वभाव को ज्ञान का भेदन करना यही ज्ञान का स्वभाव है, यही ज्ञान का प्रयोग है। स्वयं का भोजन करना, अज्ञाता का भोजन करना, दूसरे भोग्य पदार्थ का भोजन करना, ज्ञान का स्वभाव है। जब हमको आगम से, न्याय से, तर्क से, ये विचार से ये बात सम्मत होती है, तब हम इसको उदय के काल में साक्षात रूप से इस विषय को उल्टा के अनुभव करें। उल्टा जो अनुभव हो ही रहा है, सहज रूप से हो रहा है, तब हम वहां तक इसका अवलोकन करें कि जहां तक हमको ज्ञान में ज्ञान योजन का प्रतिभास नहीं आ रहा है, पहले तो प्रतिभास है निर्णय है, वो प्रतिभा का स्वरूप है कि ज्ञान में ज्ञान वेदन है, और ज्ञान स्वयं का वेदन का त्याग कभी कर सकता नहीं, कभी करता भी नहीं। लेकिन उदय का वेदन करने का हमारा अभिप्राय और हमारा उनका प्रयोग तो सिद्ध हुआ परिणाम इतना है कि ये बात ही बिल्कुल गायब हो गई है। ज्ञान ज्ञान का वेदन में है, पर ज्ञान में किसी का अन्य वेदन हो ही नहीं सकता, कोई अवकाश ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही इसमें नहीं है, ये बात गायब हो गई है। तो उसको ऊपर उठाने के लिए जो पुरोहित हो गई है, शास्त्र भाषा में उसको कहते हैं कि पुरोहित हो गई है, उसको आयुर्वेद करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए, तो उसका अवलोकन करे, बारीकाई से अवलोकन करे कि हमारी सत्ता, हमारी सत्ता ज्ञान में है या हमारी सत्ता सत्ता मैंने मैं कहा, मैं ऐसा अनुभव कहाँ होता है। जब तक असत्ता आदि विभाव में मैं कहने का अनुभव होगा, तब तक ज्ञान मात्र में मैं कहने का अनुभव आई नहीं सकता।
लेकिन साधना का परिणाम भी इसमें देता है। क्योंकि वे बहुत कमजोर हैं समाज, फिर भी इसमें लक्ष्य बदल जाएगा। जैसे मनुष्य ही कुछ क्रिया में प्रवर्तित होता पूजा करता है, भक्ति करता है, स्थिति करता है, साक्षात्कार करता है, और ये यात्रा दान दक्षता आदि किसी भी सेवा आदि की किसी भी प्रकार की प्रगति करता है। सवाल ये नहीं उठा कि उसका लक्ष्य कहाँ है, ये सवाल नहीं कि प्रगति कितने पैमाने में करता है, इसका प्रमाण कितना है, आधा घंटे का है, एक घंटे का है, दो घंटे का है, चार घंटे का है, छः घंटे का है, ये सवाल है। सवाल ये है कि इसका लक्ष्य कहाँ है, बिना लक्ष्य कितने भी तीर चलाएगा एक भी तीर जहाँ मारना है वहाँ पहुँचेगा ही नहीं, क्योंकि कितना अंतर है ये पता नहीं, पर कहाँ लगाना है वो भी पता नहीं, तो कितने देर से हो रहे वो भी पता नहीं होगा, पर किस दिशा में लगाना, कितने दिशा दसा दिशा है कहाँ कहाँ पर कुछ पता नहीं। तो जैसे बिना लक्ष्य के छोड़े हुए दान निश्चित है, वैसे ही बिना पैसा और बिना लक्ष्य जितनी भी क्रिया होती है वो निकल जाती है, वो सफल नहीं होती, ये भी इसका कारण शास्त्र में ये बात आती है कि इस जीव में अनंत बार अनंत क्रियाएँ थी जब तक शास्त्र किया गया आगे सभी के, फिर भी कुछ काम नहीं हुआ है, इसका यही कारण है कि इसमें पहचान करके लक्ष्य बदलने तक की परिस्थिति में वो नहीं आया, बिना लक्ष्य ही वो चला जाता है, तो सोचता ही नहीं कि इसमें लक्ष्य करने की कोई बात जो प्रधान विषय है या सारे सफलता और निर्भयता का दौर कहना है, इसके दौरान में सफलता होती है कि इसके दौरान में निष्फलता होती है, इस विषय को बिगाड़ नहीं करते, वैसे ही इसमें से करते ही जाते हैं, कारण काल तक वो करते ही है, इसमें कुछ काम नहीं होता। इस विषय में श्री गुरुदेव के एक 357 नंबर का बोल है कि ऐसा बोल है कि जिसको लक्ष्य प्राप्त हुआ उसको पहचान भी उसकी प्रगति लक्ष्य पूर्वक कैसे होती है, लक्ष्य समेत कैसे होती है, उसका गुरुदेव के शब्द में और गुरुदेव की शैली में उसका बहुत अच्छा चित्र है।
प्रयोग से जिसको पहचान हुई अपने स्वरूप की, उसको अपना परिपूर्ण अस्तित्व का एक लक्ष्य हो जाता है कि यही मैं हूँ, यहाँ से उसका लक्ष्य फिर हटता है। ऐसा मनुष्य ही तो लक्ष्य में यह बात रही कि मैं पूर्ण आनंद का नाथ ज्ञायक प्रभु हूं, ये पहली पंक्ति है, ये लक्ष्य का विषय बात है। क्या बात है कि मैं पूर्ण आनंद का नाथ, नाथ किसको कहते हैं, स्वामी को, स्वामी को नाथ कहते हैं, जो योग और क्षेम को रखते हैं, प्रतिपादित करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, मैं आनंद को सुरक्षित रखना और आनंद को पैदा करना यही ये नाथ का कार्य है। तो मैं पूर्ण आनंद स्वरूप हूँ, ऐसा ज्ञायक प्रभु हूँ मैं। गुरुदेव को हरे को प्रभु करके बुलाते हैं। ये महानता थी गुरुदेव की कि इनकी निंदा करने वाले को भी वो प्रभु ही कहते थे। कितने ही अखबारों में अनुचित बात, अनुचित शब्द प्रयोग से बात आती थी, वो पढ़ते थे तो ऐसा कहते थे कि अरे प्रभु तुमको क्या हुआ है। क्या कहते थे? अरे प्रभु तुमको क्या हुआ, ये क्या हुआ था? यहाँ तो आत्मा की पवित्रता का प्रकरण चलता है हमेशा। क्या चलता था? आत्मा परिपूर्ण पवित्र चीज है, इसकी पवित्रता को कैसे प्राप्त करें, कैसे हासिल करें, इसकी उपाय, उसका मार्ग, इसकी शोध, उसकी खोज, ऐसा प्रकरण चलता है। उसको छल से अन्यथा ग्रहण करके कोई अन्यथा बात कर देते या लिख देते कि कांजी भाई ऐसा कहते हैं, कांजी भाई ऐसा कहते हैं, कांजी भाई ऐसा कहते हैं, तो प्रसाद में तो ऐसे होता है। कहते कहते प्रभु क्या कहते, जो अपने को प्रभु देखते हैं तो सामने वाले को प्रभु ही देखते हैं। इनका घोषित पर्याय का ज्ञान है लेकिन वो बंद कर देते हैं। जैसे बच्चा, कोई बच्चा बाजार में मिल गया, कोई गाली दे दी, बूढ़े आदमी 7 साल का बच्चा हो, गाली बोलने को सीख गया और कोई कुसंग से और कोई बूढ़े आदमी को गाली बोल दे, बुजुर्ग आदमी को क्या करेगा? वो बच्चा है, उसको पता नहीं है मैं क्या बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ उसको भी पता नहीं है। बच्चा कहाँ गए ऊपर जाएगा, इसके साथ झगड़ा करने लगेगा। अगर वो झगड़ा करेगा तो बच्चा नहीं, वो बुजुर्ग नहीं है, वो भी बच्चा ही है। बुजुर्ग होने पर भी वो बच्चा ही है, ये बात हो जाएगी। इसलिए ज्ञानी कभी अज्ञानियों से वाद विवाद तकरार झगड़े में जाते नहीं, फंसते नहीं, उतरते नहीं। कभी जान लेते हैं कि ये ऐसे वैज्ञानिक बालक जैसे लोग तो ऐसे ही करेंगे, लेकिन इनकी आत्मा भी पूर्ण परमात्मा है, प्रभु ही है। ये बात कहां से शुरू हुई कि ये बात यहां से शुरू हुई कि जब पहचान हुई तब से लक्ष्य हुआ कि मैं प्रभु हूं, प्रभु हूं, दूसरे भी तो प्रभु ही प्रभु है। बहुत सुंदर बातें आई हैं गुरुदेव के त्रिमुख से कि हमें किसी को दुख पहुंचाना नहीं, हमारे मन से, वचन से, काय के योग से किसी को भी दुख पहुंचे ये हमारा अभिप्राय कतई नहीं है। बहुत सुंदर बातें निकली है। फिर भी सत्य का प्रतिपादन होता है तो कभी असत्य के टक्कर जिसको हो, ऐसे जीवों को कभी बुरा भी लगता है तो हमें, हमारे ध्यान में है, हमारे ख्याल में है, उनको ये बात बराबर समझ में आती है, लेकिन क्या करें। हम तो रहे सत्य के उपासक, तो हमारे से बात भी यही भी यही बात आएगी। उसके ऊपर वो दृष्टांत देते थे आचार्य महाराज का, किसी मुनि महाराज का दृष्टांत देते थे कि मुनि महाराज ये कहेंगे कि हम तो है त्यागी ब्रह्मचारी, अगर हम ब्रह्मचर्य की कोई बात बताएं और किसी अब्रह्मचर्य वाले को ये अच्छी नहीं लगे, विषय दशा वाले को ये अच्छी नहीं लगे, तो हमें क्षमा कर देना। मुनिराज ऐसा कहते हैं, कितने महान हैं। तुझे बुरी लगती है
तो तू ऐसा है ना फैसा है ऐसा नहीं कहते। तो क्षमा करके वो कहते हैं कि तुम हमें क्षमा कर देना। हम क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे जो चीज हमारे पास है और जो माल हमारे दुकान में वही देखेंगे, उसका ही व्यापार चलेगा हमारे यहाँ पे। दूसरा बार है ही नहीं, लावे कहाँ से? तो वो कसाई नहीं करते उसको, पर वो खुद ही क्षमा मांग लेते हैं। जब मुनिराज क्षमा मांगते हैं, इतने महान पंच परमेश की पद में विराजमान है, वही क्षमा मांगते हैं। किसके? ऐसे पामर प्राणी होते हैं, कितने महानता है। ये बात कहां से पैदा हुई? ऐसी लोकोत्तर विनम्रता कहां से आई कि निज का प्रभु पद का लक्ष्य हुआ तो उनको भी प्रभु देखा है, तो पता चलता है कि इनकी दशा में कोई भूल हो रही है। तो अपने स्वयं के प्रभु पद को भूल गया है, अपने पवित्र परमात्मा को वो भूला हुआ है, भटका हुआ है, तो उनसे पहले ऐसा हो जाता है। उसको प्राण कर लो, चलो उसको प्राण कर लो, हम हमारे रास्ते पे चले। ये एक पहली पंक्ति है इस गुण की कि मैं पूर्णानंद का नाथ ज्ञायत प्रभु हूं। ऐसा ज्ञायत का लक्ष्य से मनुष्य भी सुनता है, क्योंकि अपने सामने बहुत से मनुष्य लोग सुनने को आते थे तो उनको ये महत्व की बात पहले ये बता दी है। दूसरी दूसरी क्रियाएं कम हो कम करते हैं हमारे यहाँ, सुनने की प्रक्रिया ज्यादा है हमारे समाज में। शास्त्र सुनना, शास्त्र पढ़ना, इसकी चर्चा करना, ये प्रवृत्ति बड़ी है। दूसरी प्रवृत्ति कुछ कम नहीं है, तो उस पर ही सीधी बात कर दी है। मैंने दूसरी प्रवृत्ति करने वाले की टिप्पणी करें पर जो अपन प्रवृत्ति करें उसकी तो कुछ बात करें ही नहीं। ये परलक्ष्य वाली प्रवृत्ति है। स्वलक्ष्य में तो अपनी ही बात को देखी जाती है कि हमारे में क्या हो रहा है। तो जो सुनने वाले आते थे उसको ये बात पहले ही बताई कि मुमुक्षु जी सत्य का श्रवण, परमात्म का श्रवण किस प्रकार करना चाहिए, कि ज्ञायत स्वरूप का लक्ष्य से ही जो सुनते हैं उसकी सुनने की प्रवृत्ति यथार्थ है। सुनने की प्रवृत्ति में दो बात है, ज्ञान भी है और राग भी है। तो राग तो पर अनुसरण करने वाली चारित्र गुण की वैभाविक प्रयास है, उसमें तो कोई दो प्रकार बन ही नहीं सकता। लेकिन ज्ञान में एकांत सुनने का भाव नहीं रह रहे, सुनने के प्रति ही लक्ष्य रह जावे और एकांत सुनते ही सुनने के ही लक्ष्य में ही ये प्रवृत्ति हो जावे तो ठीक नहीं है। बुद्धि ये बात फरमाते हैं कि यथार्थ प्रवृत्ति में तो ज्ञायत के लक्ष्य से सुनने में आ रहे, ऐसा जीव यथार्थ सुनने की प्रवृत्ति करते हैं। लक्ष्य और प्रवृत्ति एक साथ कैसे होती है, एक दृष्टा ऐसे प्रैक्टिकल रूप में, प्रयुक्त रूप में अपने जीवन में ये बात बनता है कि जैसे हम यहाँ से निकले अपने घर जाने को या दुकान को जाने को या घर से निकले मंदिर जाने को, तो प्रवृत्ति चलने की होगी और लक्ष्य जहां पहुंचना है वो बात लक्ष्य में निरंतर रहेगी। विचार बहुत से प्रकार के करेंगे, कुछ साथ में तो बातें भी चलती रहेगी है कि नहीं। पर गाड़ी चलाते हो तो उसके पांच सात पॉइंट है, उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा,
कभी इसको दबाओ कभी इसको दबाओ कभी पेड़ को इधर घुमाओ उधर घुमाओ कई प्रकार की बात नजर को आगे लाना अंदर मस्जिद में लाना कई प्रकार की बातें इसमें है। ये सब होने के बावजूद भी इतनी बहुत सी प्रवृत्तियां इसमें होने के बावजूद भी लक्ष्य एक बात का रहता है कि हमको धाम रहता है कि नहीं रहता है एक साथ रहता है अलग अलग काल में होता है एक साथ होता है प्रवृत्ति भिन्न और लक्ष्य भिन्न फिर भी उसमें मेल यही है कि लक्ष्य में पहुंचने लायक ही प्रवृत्ति होती है कहीं उधर उधर हम चले नहीं जाते चले जाते हैं क्या कोई ऐसे कहेंगे कि हमारा विचार छूट गया जहां पहुंचने का कर हम उधर चले गए ऐसा नहीं बनता वो बात लक्ष्य में रह जाती है चलने की प्रवृत्ति में बहुत से ट्रैफिक होते हैं रास्ते में वो सबको उस तरह से साइड में लेकर के चलते हैं कि कहीं हम टकराए नहीं कहीं हम रुक नहीं जाए रास्ता में और निर्धारित स्थल पर हम अपने टाइम में पहुंच जाते हैं। ऐसे भी मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति भेद ज्ञान की होती है और लक्ष्य में रहते हैं अपने आत्मा लक्ष्य में अपना नायक परमात्मा रहना चाहिए पर प्रवृत्ति में भेद ज्ञान होना किसी भी प्रकार का उदय हो भेद ज्ञान का प्रयोग चालू ही रहना चाहिए। ये दो बात अगर जीवन में फिक्स हो गई इसके लिए फिर संसार में रुलने का सवाल ही पैदा नहीं होता जब ये संसार में रुलेगा या नहीं रुलेगा ये सवाल ही पैदा नहीं होता भारत के बात है कि फिर जाएगा फिर ही फिर जाएगा यही फिरने का उपाय है यही फिरने का मार्ग है अन्यथा मार्ग है ही नहीं ये बात साफ है। तो यहाँ को दृष्टांत लिए मनुष्य की प्रवृत्ति का गुरुदेव ने कि ज्ञायक के लक्ष्य से वो सुनता है सुनते वक्त लक्ष्य उसका ज्ञायक का रहता है ये इसकी परिणाम में परिणति में मुख्यता है। अगर लक्ष्य ज्ञायक का नहीं रहा तो लक्ष्य किसी जड़ का ही रहा लक्ष्य बिना का जीव है ही नहीं ये बात भी साथ ही साथ है बिना लक्ष्य का कोई जीव होता ही नहीं इसलिए जड़ का लक्ष्य होने से ये जो सुनने की प्रवृत्ति होती है शास्त्र स्वाध्याय की प्रवृत्ति होती है वो निश्चित हो जाती है। एक कारण है इसका कि सही बात सुनते हैं हमारे में ये प्रश्न चलता है बाहर ये प्रश्न चलता है जब सही बात को सुनते हैं तब हमारी मर्जी से मैंने बिना किसी के दबाव से हम इसको सम्मत भी करते हैं फिर हमें इसका लाभ क्यों नहीं हो रहा ये प्रश्न आता है सामने। तो इसका ये स्पष्टीकरण है कि तुम्हारा लक्ष्य कहां जो तुम्हारा ये प्रश्न है कि हमको लाभ क्यों नहीं होता तो हमारा इसके सामने उत्तर में प्रश्न है ये प्रश्न उत्तर रूप है कि आपका लक्ष्य कहां किस लक्ष्य से ये बात सुनी इसके पर इस पर ये निष्फल हो या सफल हो इस पर इसके आधारित ये बात है लक्ष्य से दोहराए सफलता निष्फलता हो जाएगी ये बहुत बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है इसकी जांच कर लेना ऐसे ही प्रवृत्ति करते जा आयु कितनी छोटी है कि 25-50 साल तो वैसे ही पूरी हो जाती है बहुत अल्पकाल में ऐसा लग जाता है कि क्या बुढ़ापा आ गया क्या बाल सफेद होने लगे क्या ये शरीर में ये सब होने लगे सब काम ढीले हो जाते हैं मतलब ढीले हो जाते हैं तो सब लकीरें हो जाने लगती है पैरों में क्या
ये कहना चाहते हैं। तो कारण नहीं दे सकता है प्रसाद का, तो भी उस जीव को संयत की संयतता रुचि उस जीव को नियत रूप से निश्चित रूप से अपने स्वभाव के संस्कार पैदा हो जाते हैं अपने आत्मा में। सम्यक दर्शन के पहले मिथ्यात्व अवस्था होती है, कुछ ऐसे सोच लेते हैं कि हमको रहे मिथ्यात्म है, हमको रहे अज्ञानी, और ऐसी ऊंची ऊंची बात तो ज्ञानियों के लिए हमको तो लागू ही नहीं होती है, हम क्या करें, हमको इस स्तर पर पाते नहीं, इस पेट पर पाते नहीं, तो कहते हैं कि ऐसी नहीं है बात। मिथ्यात्व अवस्था में भी प्रयोग में अपने स्वरूप की पहचान करके अगर लक्ष्य कर लिया, लक्ष्य हो गया, तो उसी काल में जो प्रयास चलेगा, इस प्रयास में आत्मा में स्वभाव का संस्कार पैदा हुआ होगा, नियम रूप से संस्कार पैदा हो ही जाएगा, पर यह संस्कार कभी निष्पन्न नहीं होता है। मैंने इस संस्कार का जो बीज जिसने बो दिया, जिस मनुष्य आत्मा ने ज्ञान अवस्था को प्राप्त करने पहले इस बीज को बो दिया, ये बीज का नाश कभी होता नहीं, फिर काल में आगामी अनंत काल में इसका नाश होने वाला नहीं है। ये तो एक बात कहते हैं अनंत काल की, लेकिन बहुत अल्प काल में ये बीज में से अंकुर पैदा हो जाएगा और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान और धर्म की प्राप्ति हो जाएगी, अपने सुख शांति की प्राप्ति हो जाएगी। बहुत अल्प काल में ये एक सबसे बढ़िया बात है, बढ़िया मेरे महत्वपूर्ण बात है कि अगर अज्ञान अवस्था में संस्कार तक पहुंचे तो उसको सम्यक दर्शन होने वाला ही है, ये निश्चित नहीं होगा, इस बीज का नाश नहीं होगा, ये नियमित बात है, सैद्धांतिक बात है। ऐसा दृढ़ संस्कार अंदर में होवे कि जो कभी फिरे नहीं, ऐसा संस्कार कभी फिरता नहीं, इसका नाश होता नहीं। जैसे सम्यक दर्शन होते ही अप्रतिहित भाव से सागर जी मुख्य मार्ग में आगे बढ़ते हैं, वैसे ही सम्यक सन्मुखता का ऐसा दृढ़ संस्कार पता है कि ऐसे जीव को सम्यक दर्शन होता ही होता है, होता ही इसका छुटका होता है, नहीं होता है ऐसा कभी नहीं होता। ये बात में गुरुदेव ने गारंटी लेकर के घोषणा की है। तो ये जो पहचान की बात है उसमें क्या हासिल किया, पहचान करके क्या हासिल किया, संस्कार ले लिया, अब संस्कार ले लिया तो ये समय दर्शन लेकर के ही बढ़ेगा, इस बात को समय दर्शन भी घर में लेगा या आगामी घर में लेगा, लेकिन लेगा ही लेगा, और इसका निवेड़ा आ ही गया, अनंत संसार इसका छूट गया, हमें इसके लिए सारे लोगों के देखते हुए मिल जाता है। Thank you.